10 आभूषण। वेदों में अनेक आभूषणों का वर्णन है। आभूषणों के दो भेद थे, एक मणि जटित, दो मणि रहित। वेदों में अनेक मणियों का वर्णन प्राप्त होता है। मणिबंधन का बहुत महत्व वर्णन किया गया है। मणि के लिए मणि और रत्न दोनों शब्दों का प्रयोग मिलता है। रत्न धारण करने वाले को रत्नधा और रत्निन कहते थे। सुवर्ण आदि के बने आभूषणों में ये मुख्य थे, एक निष्क, यह सोने का आभूषण था और गले में पहनना जाता था। इसे पहनने वाले को निष्क ग्रीव कहते थे। क्षत्ता आदि इसे पहनते थे। दो रुक्म, यह छाती पर लटकने वाला सोने का आभूषण था। इसको पहनने वाले को रुक्म वक्षस या रुक्मिन कहते थे। यह गोलाकार होता था। मरुतों को रुक्म वक्षस कहा गया है। तीन हिरण्य, अथर्वेद में हिरण्य हस्त प्रयोग है। यह हाथ में पहना जाने वाला सोने का कंकड़ आदि है। चार प्रवर्त, यह कान में पहना जाने वाला कर्णाभरण है। यह दोनों कानों में पहना जाता था। श्रौत सूत्रों में इसे कर्णाभरण कहा गया है। तैत्तरीय संहिता में इसे कान का बूंदा बताया है। ऋग्वेद में सोने के बने कर्णाभरण को कर्ण शोभन नाम दिया गया है। पांच मणिमाला, पुरुष और स्त्री रत्न जटित सोने की माला गले में पहनते थे। उन्हें मणिग्रीव कहा जाता था। छह काशर्ण, कृष्ण जटित सोने के आभूषण को कार्षण कहते थे। छह काशर्ण, कृष्ण जटित सोने के आभूषण को कार्षण कहते थे। सात खादी, ऋग्वेद में यह पैर में पहना जाने वाला एक आभूषण बताया गया है। मरुदेव इसे पैर में पहनते थे। अथर्वेद का कथन है कि सोने और चांदी के आभूषणों को धारण करने से मनुष्य दीर्घायु होता है और अकाल मृत्यु से बचकर वृद्धावस्था तक जीवित रहता है। 11 गृह निर्माण, वेदों में गृह के अर्थ में गृह आयतन, वास्तु, पस्त्या, हर्म्य, द्रोण आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ये गृह की विभिन्न विशेषताओं को बताते हैं। अथर्वेद के दो सूक्तों में गृह निर्माण की प्रक्रिया का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें दो कमरे से लेकर 10 कमरे वाले मकान के निर्माण का वर्णन है। इसमें उपमित शब्द से निर्देश है कि मकान नक्शे के अनुसार हो। प्रतिमित शब्द से निर्देश है कि मकान का नाप तोल सर्वथा ठीक हो और परिमित शब्द द्वार आदि के यथास्थान विन्यास का सूचक है। कमरे आवश्यकता अनुसार 2 से 10 तक बनाए जाएं। मंत्र में निर्देश है कि ये कमरे अवश्य बनवाए जाए। एक हविर्धान, दो अग्निशाला, तीन पत्नी सदन, चार सदस्य, पांच देव सदन, वरुण का स्वर्ण प्रसाद। ऋग्वेद और अथर्वेद में वरुण के स्वर्ण निर्मित महल का उल्लेख है। यह तालाब के मध्य में बना है। इसमें सहस्त्र द्वार अर्थात 1000 दरवाजे हैं। मित्र वरुण के सभागृह में सहस्त्र स्थूण 1000 खंभे लगे थे। इससे इनके प्रसाद की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। वातानुकूलित भवन, अथर्वेद और यजुर्वेद में वातानुकूलित भवन के निर्माण का उल्लेख है। इसके लिए बताया गया है कि ऐसा भवन तालाब के बीच में बनाया जाए। भवन के चारों ओर बर्फ की पतली परत लगाई जाए। मकान के अंदर ठंड से बचाव के लिए अग्नि की व्यवस्था की जाए। हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परिव्ययामसि शीत हृदयहीनो भूओ अग्निश्कृणोतु भेषजम्। यजुर्वेद में भी इसी प्रकार के वातानुकूलित भवन के निर्माण का उल्लेख है। ऋग्वेद के दो मंत्रों में तीनों ऋतुओं में सुखद त्रिधातु भवन का उल्लेख मिलता है। सायण ने इन मंत्रों में त्रिधातु अर्थ त्रिभूमिकम तिमंजिला लिया है। 12 नगर और ग्राम, वैदिक साहित्य में नगर के अर्थ में पुर और पुर शब्द मिलते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने पुर शब्द का अर्थ दुर्ग या किला लिया है। तैत्तरीय संहिता आदि में त्रिपुर और महापुर शब्द मिलते हैं। त्रिपुर में संभवतः तिहरी सुरक्षा की दीवारें होती थी। महापुर विशाल नगर के लिए है। अथर्वेद में पुरों के निर्माता देवगण बताए गए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि देवों में भी कुछ उच्च कोटि के शिल्पी होते थे। ऋग्वेद में वर्णन है कि असुरों के किले पत्थर के बने होते थे। ऐसे 100 किलो को इंद्र ने नष्ट किया। अन्यत्र वर्णन है कि ऐसे 99 पुरों को नष्ट करके इंद्र ने वृत्र और नमुची राक्षसों को मारा। अथर्वेद में उल्लेख है कि लोहे के किले बनाए जाएं, जिससे वे अभेद्य हों। असुरों के भी लोहे के बने किले थे। इंद्र ने असुरों के लिए ऐसे किलों को नष्ट किया। देवों के भी सोने के पुर का उल्लेख है। असुरों के पास भी सोने के किले थे, इंद्र ने उन्हें जीता था। लोहे और सोने के किले से ज्ञात होता है कि उनके मुख्य द्वार लोहे और सोने के बने होते थे। उक्त वर्णनों से ज्ञात होता है कि असुर भी वास्तु विद्या में बहुत दक्ष थे। राजाओं के महल को हर में कहा जाता था। राजा वरुण और मित्र के प्रासाद का उल्लेख किया जा चुका है। उसके राजद्वार में 100 खंभे लगे थे और उस प्रासाद में 100 द्वार थे। ग्राम, अनेक मंत्रों में ग्राम का उल्लेख है। ग्रामों में भी सभा और समितियां होती थी। ग्राम प्रधान को ग्रामणी कहते थे। उसका विधिवत अभिषेक होता था। वह राजकृत अर्थात राजा के निर्वाचकों में एक होता था। ग्रामणी का पद सम्माननीय होता था। वैदिक ग्रामों में गृह शिल्पों का प्रचलन था। तक्षा, कुलाल, करमार, वप्ता, सुनार, लोहार, बासोवाय, मलग आदि सभी ग्रामों में होते थे। स्त्रियां ऊन कातना, सूत कातना, वस्त्र बनाना, वस्त्रों को रंगना, वस्त्रों पर बेल बूटे का काम आदि करती थी। ग्रामों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि कर्म तथा दुग्ध व्यवसाय था। 13. शयनासन और पात्र। शयनोपकरण फर्नीचर के लिए प्राचीन शब्द शयनासन और गृहोपस्कर है। शयनासन में सोने और बैठने के उपयोग में आने वाला सामान है। गृहोपस्कर में घरेलू उपकरण या सामान आता है। शयनोपयोगी इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। 1. शयन, यह शैया के लिए है। 2. प्रोष्ठ, यह तख्त या बेंच के लिए है। तल्प, यह बहुमूल्य पलंग के लिए है। 4. वह, यह पालकी या झूला है। स्त्रियां इस पर सोती भी थी। कशिपु, यह सोफा के लिए है। हिरण कशिपु सुवर्ण जटित सोफा के लिए प्रयुक्त होता था। 6. आसंदी, कुर्सी के लिए है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसका प्रयोग राजासन या सिंहासन के लिए हुआ है। 7. आसन, बैठने के लिए प्रयुक्त चटाई आदि। पात्र, वैदिक साहित्य में इन पात्रों और घरेलू सामान का उल्लेख मिलता है। 1. कुंभ, मिट्टी का घड़ा। 2. कुंभी, मिट्टी का छोटा घड़ा। 3. कलश, धातु निर्मित घड़ा, कलश। 4. गरगर, धातु या मिट्टी का बना घड़ा, गगरा या गगरी। 5. आम पात्र, मिट्टी से बने कच्चे बर्तन। मिट्टी के पके बर्तनों को नील लोहित कहते थे। 6. अमत्र, या पत्थर या लकड़ी की बनी कुंडी है। यह कटोरे का काम देता था। 7. कंस, गिलास या जार जैसा बर्तन। 8. स्थाली, पतीली या बटलोई के लिए है। 9. अंसद्री, अंसद्री, यह पतीली या भगोना है। 10. ऊखा, यह मिट्टी की बनी हांडी या कड़ाही के तुल्य बर्तन है। 11. चम्मच, बड़ा चमचा। 12. दरवी, छोटी चम्मच। 13. रजत पात्र, चांदी के बर्तन। 14. अयस पात्र, लोहे के बर्तन। 15. स्थीवी, मिट्टी का बहुत बड़ा घड़ा, कुठला या कुंडा। 16. उलुखल, ओखली। 17. शूर्प, सूप। 18. धृति, चमड़े की बनी मशक। 19. चषक, प्याला। 20. तितऊ, चलनी। 21. शिक, छीका। 22. मूसल। 23. उर्दर, अनाज नापने का बर्तन। 24. स्त्रुआ, स्त्रुचा, लकड़ी के चम्मच, यज्ञ में घी डालने की। 25. बभी, छोटी पतीली या कटोरी। 14. यातायात के साधन। यातायात के साधनों में रथ मुख्य था। यह यातायात, क्रीड़ा और युद्ध तीनों में प्रयुक्त होता था। रथ में 2, 3 या 4 घोड़े तक जोते जाते थे। अथर्ववेद में राजा परीक्षित के रथ में 20 ऊँटों के जोतने का वर्णन है। रथ में अस्वतरी के जोतने का भी वर्णन है। वेदों में रथ के प्रत्येक अंग का विस्तृत वर्णन मिलता है। रथ के अतिरिक्त अनस, बैलगाड़ी, शकट, सगड़ भी यातायात का साधन था। कृषि का अन्न इक्षु अथवा ईख, कुश आदि अनस से ढोया जाता था। वेदों में जलयान, पोत अथवा जहाज का भी व्यापार आदि के लिए बहुत उपयोग होता था। अनेक मंत्रों में बड़े जलयानों का उल्लेख है।